हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 7 श्लोक संख्या 10 से लेकर 15 तक पढ़ने का प्रयास करेंगे। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। न कामयेनाथ तदप्यहं क्वचिन् न यत्र युष्मत् चरणं भुजासव। महत्तमान्तर्हृदयान्मुखच्युतो वीधस्वकर्णयुतमेशमेवर। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनं प्रणाम दुःखशमनं तं नमामि हरि परम। तस्मात् संकीर्तनं विष्णु जगन्मंगलमोहसां महत्तामपि कौरव्यं विद्यायैकान्तिकः निशिकृतम्। जय जय श्री राधारमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित छोर प्रभु। जय जय माखन छोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की सिकंद तीसरा अध्याय 7 जिसका शीर्षक है विदुर द्वारा अन्य प्रश्न। तो जैसा कि हमने कल पढ़ा कि विदुर जी मैत्रेय मुनि से बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं और मैत्रेय मुनि ने उनका उत्तर भी देना शुरू किया है। तो आज विदुर जी ने कल हमसे पूछा, फिर मैत्रेय मुनि से पूछा, आत्मा जो भगवान का ही एक अंश है वो तो बिल्कुल शुद्ध है, और आत्मा चाहे जो भी कल हो, जो भी कंडीशन हो, जो भी काल हो, स्थिति हो, जो भी समय हो, वो कभी भी चेतना से बाहर नहीं आती है, तो फिर वो अज्ञानता में लिप्त क्यों हो जाती है, उसके विषय में पूछा। और उसके अलावा भी बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा कि भगवान परमात्मा के रूप में हर जीव के हृदय में स्थित है, तो फिर जीवों के कर्मों से दुर्भाग्य तथा कष्ट क्यों प्रतिफलित होते हैं। मैत्रेय मुनि ने उत्तर देना प्रारंभ कर दिया है। उन्होंने कहा कि सेयम भगवतो माया यन्नयेन कुरु वृद्धे ईश्वरस्य विमुक्तस्य कार्पण्य उत्तबंधन। यानी कुछ बद्ध जीव यह सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं कि परब्रह्म या भगवान को माया द्वारा जीता जा सकता है, किंतु साथ ही उनका यह भी मानना है कि वे अबद्ध हैं। यह समस्त तर्क के विपरीत है। तो भगवान जो है वो बिल्कुल बेवकूफ लोग होते हैं जो ऐसा सोचते हैं कि इस भौतिक जगत में आकर गुणों के द्वारा बांधे जा सकते हैं, जबकि भगवान इन गुणों के स्वामी हैं। भगवान शक्तिमान है और शक्तिमान को शक्ति कभी भी परास्त नहीं कर सकती। और आज श्लोक नंबर 10 में वो आगे उत्तर देना मैत्रेय मुनि प्रारंभ करते हैं। तो कृपया इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। मैत्रेय मुनि कहते हैं, यदर्थेन विना उष्य पुंस आत्मा विपर्ययः प्रतीयत उपदृष्टो स्वशिरश्छेदनादिकः। यदर्थेन विनामुष्य पुंस आत्मा विपर्ययः प्रतीयत उपदृष्टु स्वशिरश्छेदनादिकः यदर्थेन विना मुष्य यद मना इस प्रकार अदर्थेन मतलब अभिप्राय का अर्थ विना यानी बिना मुष्य अर्थात ऐसे पुंस आत्म विपर्यय पुंस मतलब जीव का आत्म विपर्यय मतलब आत्म पहचान के विषय में विभ्रमर्थ। अब जीव जो है वो आत्मा को जानता नहीं है तो इसके कारण भ्रमित हो जाता है। और प्रतीयत उपदृष्टु प्रतीयत मतलब उसको ऐसा लगता है उपदृष्टु उथले दृष्टा दृष्टा का उसको कैसा दिखता है स्वशिरा स्वशिरा मतलब उसका अपना सिर छेदन आदि का काट दिया जाता है। जैसे सपने में कभी हम देखते हैं जैसे अनुवाद देखिए जीव अपनी आत्म पहचान के विषय में संकट में रहता है उसके पास वास्तविक पृष्ठभूमि नहीं होती है ठीक उसी तरह जैसे स्वप्न देखने वाला व्यक्ति यह देखे कि उसका सिर काट लिया गया है। श्री प्रभुपाद जी इस श्लोक को बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे। हम ध्यान से श्री प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़ेंगे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की इच्छा श्री प्रभुपाद जी कहते एक बार पाठशाला में एक शिक्षक ने अपने शिष्य को धमकाया कि वह उसका सिर काटकर दीवार पर टांग देंगे जिससे बालक यह देख सके कि उसका सिर किस तरह काट लिया गया है। वह बालक डर गया और उसने शैतानी करनी बंद कर दी। उसी तरह शुद्ध आत्मा के कष्ट तथा उसकी आत्म पहचान का व्यवधान भगवान की बहिरंगा शक्ति द्वारा ही नियंत्रित होते हैं। जो शुद्ध आत्मा है अब देखो यहाँ कृष्ण प्रभुपाद जी एग्जाम्पल दे रहे हैं कि उसको इसलिए कहा उसके टीचर ने ताकि उसको एहसास हो और फिर वो शैतानी करना बंद कर दे। उसी तरह शुद्ध आत्मा के कष्ट अब आत्मा तो शुद्ध है उसका भगवान भौतिक कष्ट से कोई भी लेना देना नहीं है लेकिन फिर भी उसका कष्ट उसका दुर्भाग्य आत्म पहचान का व्यवधान भगवान की बहिरंगा शक्ति द्वारा ही नियंत्रित होते हैं। यह शक्ति उन शैतान जीवों को नियंत्रित करती है जो जीवन की इच्छा के विरुद्ध जो भगवान की इच्छा के विरुद्ध जाना चाहते हैं। अब ये दुख ये संघर्ष इस संसार के जो कष्ट हैं जैसे कल प्रश्न पूछा था ना कि भाई आना संसार में भगवान कष्ट क्यों देते हैं जीवों से भगवान तो कितना प्यार करते हैं फिर कष्ट नहीं देने चाहिए तो वो क्यों है ये बहिरंगा शक्ति इसलिए देती है। ये शक्ति उन शैतान जीवों को नियंत्रित करती है जो भगवान की इच्छा के विरुद्ध जाना चाहते हैं। भगवान कभी नहीं चाहते कि जीव भौतिक जगत में आकर दुखी हो भगवान कभी नहीं चाहते कि जीव को जन्म मरण के चक्कर में फंसना पड़े ये तो जीव शैतानी करता है और भगवान की आज्ञाओं का उल्लंघन करता है वो भगवान की इच्छा के विरुद्ध जाता है। तो वस्तुतः जीव के लिए ना तो कोई बंधन है ना कष्ट है ना ही वह कभी अपनी शुद्ध चेतना गंवाता है। अपनी शुद्ध चेतना में जब भी वह अपनी स्थिति के विषय में कुछ गंभीरता से सोचता है तो उसकी समझ में आ सकता है कि वह सदैव परमेश्वर की कृपा पर आश्रित है और परमेश्वर से एकाकार होने का उसका प्रयास मिथ्या मोह है। जीव जन्म जन्मांतर में भौतिक प्रकृति पर मिथ्या ही प्रभुत्व जताने का और भौतिक जगत का प्रभु बनने का प्रयास करता है उसे कोई ठोस फल हाथ नहीं लगता। अंत में जब वह हताश हो जाता है तो वह अपने भौतिक कार्यकलापों को त्याग देता है और भगवान से एकाकार होने तथा वाग जाल द्वारा चिंतन करने का प्रयास करता है किंतु इसमें भी उसे सफलता नहीं मिलती। अब श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर बात बताई यहाँ पर समझने की है कि जीव जो है वो उसके लिए असल में कोई बंधन नहीं है कोई कष्ट नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो कभी भी अपनी शुद्ध चेतना क्या है कि मैं भगवान का दास हूँ और मैं भगवान का अंश हूँ तो उसको कभी भी नहीं गंवाता है। लेकिन उसके ऊपर जिस तरह से कल बताया था ना, बादल आ जाते हैं और सूर्य प्रकाश नहीं दिखता, उसी तरह से मोह आ जाता है अपनी भौतिक इच्छाओं का, भौतिक वासनाओं का, जिसके कारण शुद्ध चेतना ढक जाती है। लेकिन वो जो शुद्ध चेतना है वो कभी ख़त्म नहीं होती, गंवाता नहीं है वो। और अगर वो अपनी शुद्ध चेतना में जब भी वो अपनी स्थिति के विषय में कुछ गंभीरता से सोचता है, थोड़ा सा सीरियस हो जाए, सोचे, तो उसको आसानी से समझ में आ सकता है कि मैं हर तरह से भगवान की कृपा पर आश्रित हूँ। यदि भगवान मेरी संरक्षण मुझे प्रदान ना करें, भगवान मुझे सुरक्षा प्रदान ना करें, भगवान मुझे जीने के लिए वस्तुएं प्रदान ना करें, भगवान मुझे ये शरीर प्रदान ना करें, भगवान मुझे बुद्धि प्रदान ना करें, भगवान मुझे जल प्रदान ना करें, भगवान मुझे ऑक्सीजन प्रदान ना करें, ये सब कुछ भगवान के ऊपर मैं कितना डिपेंडेड हूँ, तो उसको आसानी से समझ में आ सकता है। और वो जो भगवान की इस भौतिक जगत के ऊपर, इस बहिरंगा शक्ति के ऊपर जो प्रभाव जताने का, प्रभुत्व जताने का जो प्रयास कर रहा है वो मिथ्या है, ऐसा कभी भी होने वाला नहीं है। करोड़ों आ गए, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े राक्षस, बड़े बड़े असुर, सबने आके प्रयास किया ना संसार में प्रभुत्व जताने का, क्या हुआ? आज किसी का नाम और निशान तक बाकी नहीं है, सब हताश हो जाते हैं, क्योंकि ये बहिरंगा शक्ति, ये भौतिक जगत आनंद करने की जगह है ही नहीं। जो कुछ हम इस भौतिक जगत में कितने प्रयास से हम प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, पूरे अपने इतने सुंदर जीवन को, मनुष्य जीवन को जो कि भगवत प्राप्ति के लिए मिला, उसको हम पूरा जाया कर देते हैं और हाथ कुछ नहीं आता। होता क्या है, मृत्यु हो जाती है और हम ये सब छोड़ के चले जाते हैं, या फिर जीते जी कोई चोर लेके जाता है। आजकल तो बच्चे ही लेके ले जाते हैं, किसी तरह से धोखा करा के सिग्नेचर करवा देते हैं, माता पिता से धन ले लेते। तो ये संसार में कुछ ऐसा नहीं है जिसका कोई सार हो या जो कुछ प्राप्त होकर जीवन में सुख प्राप्त होगा, नहीं। सब जितना जितना सुख होगा उतना उतना ईर्ष्या बढ़ेगी, उतना उतना कष्ट बढ़ेगी जीवन में। तो ये संसार में तो ऐसा ही, और फिर क्या होता है, जीव जो है वो सोचता है संसार में तो बहुत कष्ट है, मेहनत करने के बाद भी सुख मिल नहीं रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, भगवान में एकाकार हो जाऊँगा। क्योंकि रिश्ते ही तो दुख देते हैं, कोई रिश्ता नहीं चाहिए। एकाकार होने तथा चिंतन करने का प्रयास करता है, इसमें भी कोई सफलता नहीं मिलेगी उसको, क्योंकि अव्यक्ता ही गतिर दुखम। तो श्री प्रभुपाद जी कहते हैं ये सारे कार्य माया शक्ति के आदेशानुसार संपन्न किए जाते हैं। इस अनुभव की तुलना स्वप्न में किसी मनुष्य द्वारा अपना सिर काटे जाने के अनुभव से की गई है। जिस व्यक्ति का सिर काटा जाता है वह भी देखता है कि उसका सिर काट लिया गया है। यदि किसी मनुष्य का सिर काट लिया जाए तो वह देखने की शक्ति खो देता है। अतएव यदि कोई मनुष्य यह देखता है कि उसका सिर काट दिया गया है, तो उसका अर्थ है कि यह हुआ कि उसने उसी तरह सोचा है जैसा कि व्यामोह में है। श्री प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं ये श्लोक को समझा करके कि जीव जो है अपनी पहचान के विषय में हमेशा भूल जाता है कि मैं वास्तव में कौन हूँ, और उसके पास वास्तविक कुछ भी अपनी रियलिटी के बारे में पता नहीं होता है, और वो समझता है कि मैं संसार में दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। तो वास्तव में उसको कोई दुख है ही नहीं, क्योंकि वो तो शुद्ध आत्मा है। लेकिन जैसे हम सपने में कैसे देखते हैं कि मेरा सर कट गया, अब जिसका सर कट गया तो वो तो देख नहीं सकता है ना, कि क्योंकि उसको तो देखने की शक्ति समाप्त हो जाएगी। लेकिन फिर भी अगर वो देख रहा है तो मतलब वो मोह में है। उसी तरह से आत्मा शुद्ध है, भगवान का अंश है, लेकिन यदि वो देख रही है कि मैं कष्ट में हूं तो इसका मतलब है वो मोह में है, क्योंकि आत्मा के लिए कोई कष्ट है ही नहीं। इसी तरह शाश्वत रूप से जीव परमेश्वर के अधीन होता है और यह ज्ञान उसके पास रहता है, किंतु वह कृत्रिम रूप से सोचता है कि वह स्वयं ईश्वर है, और यद्यपि वह ईश्वर है तथापि माया के कारण वह अपना ज्ञान खो चुका है। अगर वो सोचता है कि मैं ईश्वर हूँ, मतलब वो मोह में है, उसको दिख नहीं रहा है कि कितना कंट्रोल्ड है वो अगर कोई ईश्वर है तो वो बूढ़ा क्यों हो रहा है? अगर कोई ईश्वर है तो मर क्यों रहा है? अगर कोई ईश्वर है तो बीमार क्यों हो रहा है? तो तथापि माया के कारण अपना ज्ञान खो चुका है। इस विचारधारा का कोई अर्थ ही नहीं है। जिस तरह अपने सिर को कटता हुआ देखने का कोई अर्थ नहीं है, यही प्रक्रिया है जिससे ज्ञान ढका हुआ है। चूंकि जीव की यह कृत्रिम विद्रोही दशा से सारे कष्ट उसे सारे कष्ट प्रदान करती है, अतः यह समझना चाहिए कि उसे भगवत भक्त के रूप में अपना सामान्य जीवन ग्रहण करना चाहिए और ईश्वर होने की भ्रांत धारणा से मुक्त होना चाहिए। उसको अपनी रियल स्थिति को समझना होगा कि मैं भगवान का दास हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ। और जब वो इस वास्तविक स्थिति को समझेगा, उसे भगवत भक्त के रूप में अपने आप को सामान्य जीवन गुजारना पड़ेगा कि मैं भगवान का दास हूँ तो मुझे किस तरह से भगवान की सेवा करनी चाहिए भगवान का, और ईश्वर होने की भ्रांत धारणा से मुक्त होना है। अपने को ईश्वर सोचने की तथाकथित मुक्ति अविद्या का अंतिम प्रतिफल है। अविद्या का सबसे बड़ा जो जाल है वो क्या है कि जीव जो सोचे कि मैं भगवान के अंदर होकर एक होकर भगवान बन जाऊंगा, ये सबसे बड़ा अंतिम प्रतिफल है जिससे जीव पाश में बनता है। निष्कर्ष यह निकलता है कि भगवान की नित्य दिव्य सेवा से वंचित जीव कई प्रकार से मोहग्रस्त होता है। अपने बद्ध जीवन तक में वह भगवान का नित्य दास रहता है। मोहिनी माया के पाश के अंतर्गत उसकी दासता भी उसकी नित्य सेवा दशा की अभिव्यक्ति है। चूंकि उसने भगवान की सेवा के विरुद्ध विद्रोह किया, भले ही वो मानता नहीं है, यहाँ श्री प्रभुपाद जी कहते हैं अपने बद्ध जीवन तक में वह भगवान का नित्य दास रहता है, भले वो ना भी माने, वो भगवान को डायरेक्ट सेवा नहीं करता, लेकिन किसी न किसी की उसको सेवा करनी पड़ती है, तो सब कुछ भगवान ही है, तो वो दास तो बनाए रहता है, लेकिन मोहिनी माया के पाश के अंतर्गत उसकी दासता भी उसकी नित्य सेवा दशा की अभिव्यक्ति है। नित्य वो दास तो बन रहा है, तो वो किसी न किसी का दास तो है। ऐसा हम देखते हैं कि जो श्री प्रभुपाद जी बताते हैं, जो गॉड की सेवा नहीं करेंगे ना, उसको डॉग की सेवा करनी पड़ती है। आज हम देखते हैं बहुत बड़े बड़े रिच होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, जो भगवान को नहीं मानते हैं, वो क्या करते हैं, अमेरिका में अपने घर में कुत्ता पालते हैं और कुत्ते को सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे अपने साथ लेके जाते हैं, और मॉर्निंग वॉक पे साथ लेके जाते हैं तो उनके हाथ में एक शॉपर होता है, एक प्लास्टिक की थैली होती है। तो राधा गोविंद महाराज बता रहे थे, मैंने पूछा कि ये प्लास्टिक बैग क्यों लेकर चले, तो बोला ये कुत्ता है ना, रास्ते में कहीं पर भी स्टूल कर देगा तो गार्डन खराब हो जाएगा, तो इस कुत्ते के स्टूल को इसमें पकड़ेगा और फिर ये जाकर डस्टबिन में डालेगा। तो ये करते हैं बड़े बड़े साइंटिस्ट जो कि भगवान को नहीं मानते, वो कुत्तों की सेवा करते हैं। कुत्तों के लिए अलग उनको स्नान करने का समय होता है, उनको खिलाने का टाइम होता है, उनका बेडरूम होता है, एसी होता है, अलग से गाड़ी होती है, उनको टीच किया जाता है। तो ये हो रहा है आज संसार में, कितनी माया है। तो भले आप भगवान को नहीं मानो, लेकिन दासता तो करनी पड़ेगी। और श्री रूपा जी बोलते हैं मोहिनी माया के पाश के अंतर्गत उसकी दासता भी उसकी नित्य सेवा दशा की अभिव्यक्ति है। तो चूंकि उसने भगवान की सेवा के विरुद्ध विद्रोह किया है, इसलिए उसे माया की सेवा में रखा जाता है। वह तब भी सेवा ही करता है किंतु विकृत रीति से। ये तो सेवा लेकिन विकृत है। जब वह भौतिक बंधन के अंतर्गत सेवा के बाहर होना चाहता है, तो उसके बाद वह भगवान से एकाकार होना चाहता है। फिर सोचता है यार क्या करूं, संसार में तो फिर भी सेवा ही करनी पड़ रही है, भगवान की नहीं कर रहा हूं तो घर वालों की कर रहा हूं, घर वालों की नहीं कर रहा हूं तो कुत्तों की कर रहा हूं, इससे बेहतर है। वो बुद्धि आ जाएगी, बुद्धि में क्या सोचेगा, फिर मैं भगवान में लीन हो जाऊंगा, सेवा नहीं करनी पड़ेगी। तो यह दूसरा मोह है। इसलिए सबसे अच्छा मार्ग भगवान की शरण ग्रहण करना है और इस तरह हमेशा के लिए माया से छुटकारा पाना है, जिसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद्गीता 7.14 में हुई है। दैवी ही एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तब तरन्ति थे। भगवान कहते हैं मेरी दैवी शक्ति तीन गुणों से युक्त मेरी माया से पार करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। भगवान के साथ ना कंपटीशन नहीं करना चाहिए, कॉपरेशन करना चाहिए। ठीक है कृष्ण मैं तुम्हारी शरण में हूँ, अब क्या करो। भगवान ने कहा मामे व ये प्रपद्यन्ते माया में तन तरंग देते, जो मेरी शरण में आ जाएगा उसको माया से पार करा दूंगा। तो हमें बहुत ही सरल सुझाव दिया जा रहा है यहाँ पर कि भगवान के साथ टक्कर नहीं लेनी है, भगवान को छोड़ कर किसी और रास्ते पे जाएंगे तो केवल दुख ही दुख है, और भगवान के अंदर लीन हो जाने का ख्वाब भी कभी आनंद नहीं दे सकेगा। इसलिए सबसे सुंदर रास्ता है कि हम भगवान की शरण में जाएं, भगवान की भक्ति करें, भगवान के पवित्र नाम का जप करें, भगवान के साथ प्रेम करें, भगवान के साथ ऑनेस्ट हो जाएं कि हम मान गए हैं, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारी हैं, हम तुम्हारी ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। कितना सुंदर है ये कि हम भगवान के हो जाएं। भगवान कहते हैं ये यथा मम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव वचामि हम, जो जिस भाव से मेरे पास आता है मैं भी उसके साथ उसी तरह से डील करता हूँ। भगवान कहते हैं कि समोहम सर्वभूतेषु नामेव द्वेषोऽस्ति न प्रिय ये भजन्ते तो माम भक्त्या मयि ते तेषु चापः, वो मेरा हो जाएगा ना तो बदले में मैं उसका हो जाऊंगा, इससे बढ़कर और क्या चाहिए। आप भगवान का होकर तो देखो, वो पूरा का पूरा आपके हो जाएंगे और उसके बाद क्या बच जाता है संसार में प्राप्त करने के लिए, प्रभुत्व जताने के लिए, एकाकार होने के लिए। तो अपने आप को पहचानना है सिर्फ कि मैं कृष्ण का हूँ बस। तो आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं यथा जले चंद्रमसः कंपादिस्तत्कृतो गुणः दृश्यते सन्नपि दृष्टु आत्मनो नात्मनो गुणः यथा जले चंद्रमसः कंपादिस्तत्कृतो गुणः दृश्यते सन्नपि दृष्टु आत्मनो नात्मनो गुणः यथा जले चंद्रमसा, यथा मना जिस तरह, जले मना जल में, चंद्रमसा यानी चंद्रमा का कंपादित मतलब कंपन इत्यादि। जल में देखते हैं ना चंद्रमा, वो जब जल में हिलता है जल तो चंद्रमा भी कंपन, तत्कृत जल द्वारा किया जाता है, है ना। जल हिलता है तो चंद्रमा भी कंपन होता है, चंद्र भी ऐसा लगता है कांप रहा है। तो गुण यानी गुण, दृश्यते दृश्यते मतलब इसी तरह दिखता है, असन अपि बिना अस्तित्व के, दृष्टु यानी दृष्टा का, आत्मना यानी आत्मा का, अनात्मना मतलब आत्मा के अतिरिक्त अन्य का गुण। अनुवाद देखिए, जिस तरह जल में प्रतिबिंबित चंद्रमा जल के गुण से संबंध होने के कारण दिखने वाले को हिलता हुआ प्रतीत होता है, उसी तरह पदार्थ संबद्ध आत्मा पदार्थ के ही असमान प्रतीत होता है। जैसे पदार्थ से, अब देखो आत्मा सॉरी चंद्रमा तो हिलता नहीं है ना, चंद्रमा तो एक जगह पे खड़ा होता है, लेकिन जल में दिख रहा है ना, इसलिए जल में जैसे कोई कंकर फेंकेगा तो क्या होगा, चंद्रमा भी कंपायमान दिखेगा, हिलता हुआ दिखेगा। उसी तरह आत्मा नित्य है, अटल है, आत्मा कभी भी गुणों से नहीं बंधता है। लेकिन होता क्या है, पदार्थ से साथ संबंध हो जाता है, जैसे हमारे शरीर के साथ संबंधित होता है तो आत्मा पदार्थ के ही समान प्रतीत होता है। आत्मा अंदर जरा सी है, बैठी हुई है, उसको कुछ नहीं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्ता पुनः शोषति मारुता, उसको कुछ नहीं होता, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय इसका इसके साथ कोई बिल्कुल वो नहीं, संबंध ही नहीं है। लेकिन क्योंकि वो शरीर के साथ संबंधित हो गया तो हमको ऐसा प्रतीत होता है। श्रील प्रभुपाद की, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं परमात्मा या भगवान की तुलना आकाश में चंद्रमा से की गई है और जीवों की तुलना जल में चंद्रमा के प्रतिबिंब से की गई है। चंद्रमा आकाश में स्थिर है, वह जल में दिखने वाले चंद्रमा की तरह हिलता डुलता नहीं है। वस्तुतः आकाश में मूल चंद्रमा की तरह जल में प्रतिबिंबित चंद्रमा को कांपना या हिलना नहीं चाहिए, किंतु जल से संबंध होने से प्रतिबिंब हिलता हुआ प्रतीत होता है। यद्यपि वास्तव में चंद्रमा स्थिर है, जल चलता है किंतु चंद्रमा नहीं चलता, उसी तरह सारे जीव मोह शोक तथा कष्ट जैसे भौतिक गुणों से कुलुषित प्रतीत होते हैं। जितने भी जीव हैं, उसने पूछा था ना विदुर महाराज ने कि दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है, जीव को इतना दुख मिल रहा है, तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते चंद्रमा को तो, चंद्रमा तो नहीं हिल रहा है ना, पानी के साथ संबंध है, पानी में दिख रहा है इसलिए हिलता हुआ दिख रहा है। उसी तरह से सारे जीव मोह शोक तथा कष्ट जैसे भौतिक गुणों से कुलुषित प्रतीत होते हैं, यद्यपि शुद्ध आत्मा में ऐसे गुण सर्वथा अनुपस्थित होते हैं। शुद्ध आत्मा दुखी नहीं हो रही है, लेकिन अपनी रियलिटी को भूलकर अपने आप को शरीर समझते हैं, इसलिए दुख फील होता है। तो यहाँ शाह साहब बताए, यद्यपि शुद्ध आत्मा में ऐसे गुण सर्वथा अनुपस्थित होते हैं। प्रतियेत शब्द यहाँ पर महत्वपूर्ण है, इसका अर्थ है ऊपर से तथा वास्तविक रूप में नहीं, स्वप्न में अपना सिर कटने के अनुभव की तरह, जैसे ऊपर से दिख रहा है ये ऐसा, लेकिन असल में ऐसा है नहीं, जो चंद्रमा है वो नहीं हिल रहा है। उसी तरह से यहाँ पर जो पहले वाली एग्जाम्पल थी उसी को यहाँ पर बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी कि वास्तव में स्वप्न में सर कटने का अनुभव मतलब स्वप्न है, वो रियलिटी नहीं है। जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब चंद्रमा की व्युक्त किरणें होती हैं, वास्तविक चंद्रमा नहीं, भगवान के व्युक्त भिन्नांश भौतिक जगत रूपी जल में उलझकर चलायमान गुण वाले होते हैं, जबकि भगवान आकाश में स्थित चंद्रमा के तुल्य। अब यहाँ पर देखो ये भी इसके साथ बता रहे श्रील प्रभुपाद जी कि जिस तरह से चंद्रमा उसके अंदर नहीं आया है, जल के अंदर सिर्फ चंद्रमा की किरणें आई हैं, तो किरणें विचलित हुई हैं, चंद्रमा विचलित नहीं हुआ। उसी तरह से भगवान को अगर आकाश या चंद्रमा, आकाश के ऊपर चंद्रमा को भगवान के साथ अगर हम एग्जाम्पल करें तो चंद्रमा एक ऐसे ही रहेगा, यानी भगवान तो गुणों से विचलित नहीं होगा, लेकिन जो उसकी किरणें हैं मतलब हम जो जीव हैं भिन्नांश हैं, भगवान के वियुक्त भिन्नांश भौतिक जगत रूपी जल में उलझकर चलायमान हो जाते हैं। तो हम भिन्नांश जैसे आकाश के चंद्रमा की किरणें, उसी तरह हम भगवान के अंश इस संसार में आकर उलझकर चलायमान हो जाते हैं, जबकि भगवान आकाश में स्थित चंद्रमा के तुल्य है जो जल से किसी प्रकार से स्पर्श में नहीं आता है। अब भगवान के ऊपर गुण कैसे अटैक करेंगे, वो तो बिल्कुल ऐसे ही स्पर्श नहीं करता किसी भी वस्तु से, भौतिक वस्तु से, भगवान तो आध्यात्मिक है तो भौतिक गुण उसके ऊपर अटैक नहीं करते। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी आगे कहते हैं सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश पदार्थ से परावर्तित होकर उसे चमकीला तथा प्रशंसा से के योग्य बनाता है। सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश पदार्थ से परावर्तित होकर उसे चमकीला तथा प्रशंसा के योग्य बनता। अगर संसार में सूर्य और चंद्रमा की रोशनी नहीं होती तो कोई भी पदार्थ जो है वो रोशन नहीं होता, कहीं प्रकाश नहीं होता, तो उनकी प्रकाश के कारण ही संसार में रोशनी है, प्रकाश है और वस्तुओं की प्रशंसा करने के योग्य है। तो जीवित लक्षणों की तुलना वृक्षों तथा पर्वतों जैसे भौतिक रूपों को प्रकाशित करने वाले सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश से की जाती है। जीवित लक्षणों यानी संसार में जो जीवित दिख रहे हैं उनकी तुलना वृक्षों तथा पर्वतों जैसे भौतिक रूपों को प्रकाशित करने वाले सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश से की जाती है। यानी वो क्या है, वो सिर्फ प्रकाश है। सूर्य या चंद्रमा के प्रतिबिंब को अल्पज्ञानी असली सूर्य या चंद्रमा मान बैठते हैं। अब देखो जितने भी है ना संसार में, सूर्य तो एक है ना, लेकिन आप बहुत सारे घड़े भर के रखोगे उसके अंदर एक ही सूर्य दिखेगा तो बेवकूफ लोग क्या सोचेंगे, यहाँ तो बहुत सारे सूर्य हैं। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि सूर्य या चंद्रमा के प्रतिबिंब को अल्पज्ञानी असली सूर्य या चंद्रमा मान बैठता है और शुद्ध अद्वैत दर्शन उन्हीं विचारों से उप जाता है। वस्तुतः सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश स्वयं सूर्य तथा चंद्रमा से भिन्न है। प्रकाश अलग है और सूर्य अलग है, यद्यपि उनमें सदा संबंध बना रहता है। संबंध क्या है कि जब सूर्य होगा तभी प्रकाश होगा, सूर्य नहीं है तो प्रकाश नहीं होगा। लेकिन फिर भी प्रकाश एक अलग चीज है, सूर्य एक अलग चीज है। तो आकाश भर में फैली हुई चांदनी निर्विशेष प्रतीत होती है, किंतु चंद्रलोक जिस रूप में वह है साकार है, और चंद्रलोक में रहने वाले जीव भी साकार हैं। चंद्रमा की किरणों में भिन्न विभिन्न भौतिक वस्तुएं कम या अधिक महत्वपूर्ण प्रतीत होती हैं। ताजमहल पर चंद्रमा का प्रकाश चांदनी निर्जन स्थान में उसी प्रकाश की उपेक्षा अधिक सुंदर लगता है। यद्यपि चंद्रमा का प्रकाश सर्वत्र वही रहता है, किंतु भिन्न भिन्न प्रकार से निखरने से वह भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। अब यहाँ श्रील प्रभुपाद जी चंद्रमा के प्रकाश के बारे में बता रहे हैं कि जो चंद्रमा का प्रकाश होता है, अगर कहीं पर आपको चांद नहीं दिख रहा है, मतलब आप ऐसी जगह पर रह रहे हो कि आप रात को सो रहे हो, ठीक है, चांद किसी बिल्डिंग से या किसी चीज से छिप गया है, तो रोशनी तो फिर भी चांद की आ रही होगी ना आजू बाजू, तो जो सिर्फ रोशनी को देखेगा वो क्या सोचेगा, चांद नहीं है ये, खाली निराकार रोशनी, ऐसा कभी नहीं होगा। चांद का अस्तित्व है तभी तो चांद की रोशनी है। तो जो निराकार सोचते भगवान को, वो सोचते भगवान नहीं है लेकिन भगवान की ज्योति है, भगवान की शक्ति है। अरे जब शक्तिमान ही नहीं है तो शक्ति कैसे हो सकता है। तो निराकार जो भगवान की ज्योति है वो भगवान की ही रोशनी है, भगवान का ही नूर है। और श्री रूपा जी आगे चांदनी के विषय में बताते कि जिस जगह पर चांदनी पहुंचती है उस जगह का अपना प्रभाव होता है, उसी के कारण चांदनी का प्रभाव पड़ता है। जैसे ताजमहल पर अगर चांदनी आएगी तो वो सुंदर लगेगा, रेगिस्तान में आएगी तो इतना कुछ आकर्षण फील नहीं होगा, निर्जन स्थान में उसकी प्रकाश की उपेक्षा अधिक सुंदर क्या लगेगा ताजमहल। यद्यपि चंद्रमा का प्रकाश सर्वत्र सेम है, चंद्रमा ने अपना प्रकाश कम बढ़ा नहीं है, लेकिन उस वस्तु शक्ति के कारण जो है ना वस्तु जो है वो ज्यादा सुंदर या कम सुंदर लगती है, किंतु विभिन्न भिन्न भिन्न प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार से निरखने के कारण वह भिन्न भिन्न प्रतीत होते। इसी तरह भगवान का प्रकाश सर्वत्र एक समान वितरित होता है, किंतु भिन्न भिन्न प्रकार से ग्रहण किए जाने के कारण वह भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। इसलिए जल पर चंद्रमा का प्रतिबिंब को वास्तविक नहीं मानना चाहिए, कोई बेवकूफ होगा जो सोचेगा ये रियल चंद्रमा है, और संपूर्ण स्थिति को अद्वैतवाद दर्शन के माध्यम से समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। चंद्रमा का हिलने डुलने कंपन का गुण भी परिवर्तनशील है, जब जल स्थिर रहता है तो कंपन भी नहीं होता, अधिक स्थिर बुद्धि आत्मा में कम कंपन होता है, किंतु भौतिक संबंध होने से यह कंपन का गुण न्यूनाधिक रूप में सर्वत्र विद्यमान रहता है। अब यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि जैसे जैसे बुद्धि स्थिर होती जाती है ना, तब जीव को ये समझ में आ जाता है, ये कंपन जो चंद्रमा जल में दिख रहा है ना, वो स्थिर हो जाता है। जितना जितना हम आध्यात्मिकता में आगे जाएंगे, उतना उतना भौतिक कष्ट, भौतिक प्रॉब्लम्स, भौतिक समस्याएं, उनकी इम्पोर्टेंस कम होती जाएगी। और हम भगवान को भी जितना जितना नाम जप करेंगे, स्मरण करेंगे, तो भगवान की रियलिटी को भी समझ सकेंगे। तो ये सब जो भी कष्ट हैं, जो भी उलझन है, वो उसी के कारण है, क्योंकि भगवान के साथ अपना संबंध नहीं जोड़ा है। और किसके साथ? भौतिक संबंध होने से, या कंपन का गुण न्यूनाधिक रूप से सर्वत्र विद्यमान है, भौतिकता के साथ इतना संबंध जोड़ दिया है। तो जैसे जैसे भौतिक वस्तुओं और व्यक्तियों के साथ संबंध जुड़ा हुआ संबंध भगवान की ओर जब डाइवर्ट होगा ना, तो ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं, सवै निवृत्ति धर्मेण वासुदेवानुकंपया भगवत भक्ति योगेन तिरोधत्ते शनैरिह। सवै निवृत्ति धर्मेण वासुदेवानुकंपया भगवत भक्ति योगेन तिरोधत्ते शनैरिह। सवै समन वह, वय मन भी, निवृत्ति धर्मेण, निवृत्ति मतलब विरक्त यानी आसक्ति नहीं हो जिसमें, धर्मेण संलग्न रहने से, वासुदेवानुकंपया, वासुदेव मतलब भगवान की अनुकंपया मतलब कृपा से, और भगवत भक्ति योगेन, भगवान यानी भगवान से संबंधित, भक्ति योगेन मतलब जुड़ने से, तिरोधत्ते यानी कम होता है शनाए क्रमश यह संसार में। वही बात यहाँ पर मैत्रेय मुनि बहुत ही सरल रूप से बता रहे हैं। वे कहते हैं किंतु सवय निवृत्ति धर्मेणा, यानी किंतु आत्म पहचान की इस भ्रांति को भगवान वसुदेव की कृपा से, विरक्ति भाव से, भगवान की अभिव्यक्ति से, भक्तिमयी सेवा की विधि के माध्यम से धीरे धीरे कम किया जा सकता है। एक बार फिर से पढ़ेंगे ट्रांसलेशन को, बहुत ही सुंदर। जो जो प्रश्न देना विदुर जी के, उनका ये सफिशिएंट आंसर है। और उसमें वे कहते हैं सवै निवृत्ति धर्मेण वासुदेवानुकंपया, जब भगवान की कृपा होगी और जो बाकी चीज़ों से, भौतिक वस्तुओं से, भ्रांतियों से छूटकर हम भगवत भक्ति योगेन, भगवान के साथ अपने योग को जोड़ेंगे, तो फिर क्या होगा, तिरोदत्ते शनै रिहा, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता ये सारी जो समस्याएं हैं वो शनै शनै मतलब क्रमशः खत्म हो जाएंगी। अनुवाद, किंतु आत्म पहचान की उस भ्रांति को भगवान वसुदेव की कृपा से, विरक्त भाव से, भगवान की भक्तिमयी सेवा की विधि से के माध्यम से धीरे धीरे कम किया जा सकता है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं संसार का कंपन गुण जो पदार्थ के साथ अपनी पहचान करने या दार्शनिक चिंतन के भौतिक प्रभाव में आकर अपने को ईश्वर समझने के फलस्वरूप उत्पन्न होता है, उसे भगवान वसुदेव की कृपा से भगवत भक्ति द्वारा समूल नष्ट किया जा सकता है। जो भी संसार का ये जो कंपन है, चंद्रमा का कंपन है, पदार्थ के साथ जो हमारी पहचान है, जो दार्शनिक चिंतन है, भौतिक प्रभाव में आकर जो हम भगवान को नहीं समझ पा रहे हैं, वो सारा का सारा समस्या जो है भगवान वसुदेव की कृपा से भगवत भक्ति द्वारा समूल नष्ट हो जाएगी। जैसी कि प्रथम स्कंद में व्याख्या की गई है, चूँकि भगवान वसुदेव की भक्ति करने से शुद्ध ज्ञान को बुलावा दिया जाता है। जैसे भगवान की भक्ति जैसे ही हम करते हैं, तो उसके साथ साथ ज्ञान जो है वो स्वतः हमारे हृदय में, भगवान कहते तेषाम एवानुकम्पार्थ अहम अज्ञानजम तम नाशयाम यात्म भावस्तु ज्ञान दीपेन भास्वता। जो प्रेम के साथ मेरा भजन करते हैं, उनके ऊपर ऐसी कृपा करता हूँ कि अज्ञान का जो अंधकार है उसको नाश करता हूँ, ज्ञान का प्रज्वलित दीपक
चलाता हूँ।
तो शीला प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर बात बता रहे हैं कि चूंकि भगवान वसुदेव की भक्ति करने से शुद्ध ज्ञान को बुलावा दिया जाता है, अतः यह मनुष्य को देहात्म बुद्धि से तुरंत विलग करके सामान्य आध्यात्मिक स्थिति में इसी जीवन में भी ला देती है और मनुष्य को उन भौतिक हवाओं से मुक्त कर देती है जो उसे कंपाती हैं। तो ये भक्ति जो है वो जीव को स्थिर कर देती है और कांपने नहीं देती। भक्ति का ज्ञान ही मनुष्य को मुक्ति के मार्ग तक ऊपर उठाता है। भक्ति के बिना हर वस्तु को जानने के उद्देश्य से ज्ञान का विकास निष्फल प्रयास माना जाता है और मनुष्य को ऐसे प्रेम रूपी श्रम से वांछित फल नहीं मिल सकता। यहाँ श्रीला प्रभुपाद जी बोलते हैं भक्ति किए बिना हर वस्तु को जानने का उद्देश्य, अगर आप भगवान को जानना चाहते हो लेकिन भक्ति नहीं करना चाहते हो, केवल शास्त्रों को सुनो, ज्ञान प्राप्त करो, विद्वान बन जाओ और बहुत बहुत ना कोशिश करो लेकिन भगवान की भक्ति नहीं, तो ज्ञान का विकास निष्फल प्रयास माना जाता है और मनुष्य को ऐसे प्रेम रूपी श्रम से वांछित फल, ऐसा जो है मतलब जिसमें भगवान का कोई प्रेम नहीं है, खाली श्रम है, तो उससे वास्तविक फल प्राप्त नहीं होता। भगवान वसुदेव एकमात्र भक्ति में ही सेवा से प्रसन्न होते हैं और इस प्रकार उनकी कृपा की अनुभूति भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति से ही संभव है। इतना समझना चाहिए हमको कि भगवान एकमात्र भक्ति में सेवा से प्रसन्न होते हैं। प्रेम से यदि भगवान की सेवा की जाती है तो भगवान खुश हो जाते हैं और इस प्रकार उनकी कृपा की अनुभूति भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति से होती है। आपको कैसे पता चलेगा कि भगवान अब प्रसन्न हो रहे हैं मेरी सेवा से? जब हमें शुद्ध भक्तों का सानिध्य प्राप्त होगा, जब भगवान देखते ना कि ये शुद्ध प्रेम के साथ मेरी सेवा कर रहा है तो उसको शुद्ध भक्तों का सानिध्य प्रदान करते हैं। तो भगवान के शुद्ध भक्त उन समस्त भौतिक इच्छाओं से परे हैं जिनमें सकाम कर्म तथा दार्शनिक चिंतन के फल सम्मिलित हैं। यदि कोई व्यक्ति भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहता है तो उसे शुद्ध भक्तों की संगति करनी होती है। ऐसी संगति ही मनुष्य को क्रमशः भ्रमित करने वाले तत्वों से छुटकारा दिला सकती है। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी निर्णय दे रहे हैं कि यदि इन सब भ्रांत चीज़ों से, ये जो झंझट है, ये जो अज्ञानता है, उससे छुटकारा प्राप्त करना है, जिनके कारण आपकी मति भ्रमित हो जाती है कि संसार में जीव को दुख क्यों मिलता है, संसार में ऐसा क्यों हो रहा है, भगवान भगवान होकर ऐसा क्यों करते हैं, तो ये क्यों, क्या, कैसे, ये सारी भ्रांतियाँ जो हैं उस समय नष्ट हो जाती हैं जब हम किसी शुद्ध भक्त के सानिध्य में बैठकर कृष्ण की कथा सुनते हैं। और तब हमें पता चलता है कि संसार में हमारे लिए कोई दुख नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, खाली एक ही प्रॉब्लम है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं इस पूरे विश्व में केवल कृष्ण भावना का अभाव है, इसी कारण दुख है। जब जीव कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे, कृष्ण कॉन्शियसनेस हो जाए, उनको प्राप्त हो जाएगी, तो फिर ना कोई दुख होगा, ना कोई प्रॉब्लम होगी, ना कोई संकट होगा, ना कोई कष्ट होगा, ना ही कोई भ्रांति होगी, केवल और केवल आनंद होगा, कृष्ण प्रेम का आनंद। आप सबका बहुत बहुत आभार। भगवान से प्रार्थना कीजिए कि मैं अपनी सेवा और साधना के साथ साथ इन शब्दों को कुछ समझ सकूँ ताकि मैं अच्छे से डिस्क्राइब कर सकूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। हरे कृष्ण।